अभिमान की तबीयत खराब होने का पता चलने के बाद आशुतोष और काजल निशा के साथ बीच सगाई से हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हालांकि अब आशुतोष को पूरा यकीन था कि अभिमान सच में बीमार है। इस दौरान उनकी मुलाकात आशिका से हुई थी, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। आशुतोष काजल और निशा के लिए कॉफ़ी लेकर वापस अभिमान के कमरे की तरफ लौट रहे थे, तभी तृप्ति उनसे टकरा गई थी। जैसे ही तृप्ति ने आशुतोष को देखा, वो जल्दी से भागने लगी। उसके इस तरह भागने पर आशुतोष को यकीन हो गया था कि ज़रूर तृप्ति के पास आज भी उनकी बेटी आशिका है। तृप्ति भागते हुए सीधे कैफेटेरिया में घुस गई थी और उसके पीछे पीछे आशुतोष आ रहे थे। आशुतोष ने जल्द ही तृप्ति को पकड़ लिया था। रचित और आशिका वहां से चले गए थे, इस वजह से वहां आशुतोष और तृप्ति के अलावा कोई नहीं था। इस वक्त आशुतोष ने तृप्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। आशुतोष ने तृप्ति की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, 17 साल पहले भाग गई थी, लेकिन अब नहीं भागने दूंगा। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? कौन सी बेटी की बात कर रहे हो तुम? तुम अच्छे से जानते हो वो 17 साल पहले मर गई थी और उसे मारने वाला अभिमान राजवंश था। तृप्ति ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला। वो बच्चा था और तुमने उसे मोहरा बनाया, आशुतोष ने दांत पीसते हुए कहा। वो अभिमान से कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन सच को वो भी झुठला नहीं सकते थे। अभिमान बच्चा था, वो बस आशिका की जान बचाना चाहता था। हाँ, एक ऐसा बच्चा जिसने तुम्हारी बेटी को पहाड़ी पर से धक्का दे दिया था। देखो, जो भी हुआ वो गलती से हुआ होगा, लेकिन इन सब में मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, मैंने पहले सोचा था कि मैं उस बच्ची को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारी बेटी के जाने का दुख मुझे भी है, तृप्ति ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मानो उसे इस वक्त कितना ही दुख हो रहा हो। आशुतोष ने अब तक तृप्ति के हाथों को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन अचानक उन्होंने उसके हाथ छोड़ दिए। उनकी आंखें नम होने लगी थीं। अब तक वो खुद को यही दिलासा देते थे कि भले ही आशिका उनके पास ना हो, लेकिन वो जिंदा है। आशुतोष को इस तरह एक ही लम्हे में टूटा हुआ देखकर तृप्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो इस दुनिया में नहीं रही है। इस सच को मानना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें सच एक्सेप्ट करना होगा आशु। आशुतोष ने अपनी आंखें कसकर बंद की। अगले पल उनके चेहरे के भाव सर्द होने लगे थे। उन्होंने तृप्ति का हाथ झटक कर खुद से दूर कर दिया। आशुतोष ने दांत पीसते हुए कहा, आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, तो उसका कारण तुम हो तृप्ति बजाज। तुमने उसे किडनैप क्यों किया था? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो आकर मुझसे मांग लेती। क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मुझे पैसे चाहिए थे? मैं तुमसे सच में प्यार करती थी आशु, लेकिन तुम लोगों को क्यों लगता था कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे थी? सच तो ये है कि तुम लोगों को पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी के चलते तुमने अपनी बेटी को खो दिया, तृप्ति ने सख्त आवाज में जवाब दिया। आशुतोष कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। तृप्ति ने उसी की वजह से आशिका को किडनैप किया था। ये गिल्ट आज भी उन्हें अंदर ही अंदर खाया जाता था। तृप्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इस वजह से वो आसानी से निकल गई थी। हाँ, उसे कुछ दिन जेल में जरूर बिताने पड़े थे, पर बाद में वो रिहा हो गई थी। मैं तुमसे प्यार, तृप्ति ने बोलना चाहा, लेकिन आशुतोष उसकी बात बीच में काटते हुए चिल्लाकर बोले, अपने मुंह से प्यार जैसा शब्द मत निकालना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने मेरी और काजल की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्या वो कम था जो हमसे हमारी खुशियां भी छीन ली? आज भी हम दोनों का रिश्ता नॉर्मल नहीं हो पाया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आशुतोष की बातें सुनकर तृप्ति के चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए थे। यही तो वो हमेशा से चाहती थी, आशुतोष और काजल को अलग करना। न सिर्फ उसने उनके रिश्ते में दरार डाली, बल्कि उनके प्यार की निशानी आशिका की जिंदगी भी बदतर करती थी। आशुतोष और तृप्ति बात कर रहे थे, इसी बीच आशिका अपना मास्क लेने के लिए वापस कैफेटेरिया आई। वो गलती से उसे वहीं पर भूल गई थी। जैसे ही तृप्ति की नजर आशिका पर पड़ी, वो तेज आवाज में बोली, आशिका वहीं रुको। आशिका ने कान में हेडफोन्स लगा रखे थे, इस वजह से उसे तृप्ति की आवाज सुनाई नहीं दी। वहीं उसके मुंह से आशिका का नाम सुनकर एक पल के लिए आशुतोष का दिल जोरों से धड़कने लगा था। कुछ देर पहले वो इस सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि सच में आशिका अब उनके बीच नहीं रही है। आशिका को पकड़ने के लिए तृप्ति उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आशुतोष ने उसका हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने आशिका? तृप्ति एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी। एक तरफ आशिका की तो दूसरी तरफ आशुतोष, अगर उनका आमना सामना हो जाता तो ये तृप्ति के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। तृप्ति ने ना में सिर हिलाया और मायूस लहजे में कहा, आपने गलत सुना होगा, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने आशिका नहीं बोला। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अभी उस लड़की को आशिका कहकर बुलाया, आशुतोष जल्दी से बोले और फिर आवाज लगाई, आशिका रुको आशिका।
इतना कहकर वो जल्दी से आशिका के पास गए और उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर आशिका हड़बड़ा गई थी। उसने जल्दी से अपने हेडफोन्स निकाल दिए। अचानक अपने सामने तृप्ति और एक अनजान शख्स को देखकर आशिका के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। तृप्ति जल्दी से आशिका के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुमने सुना होगा मेरी भी एक बेटी थी जो तुम्हारी ही बेटी की उम्र की थी, ये वही है। ठीक है तुम लोग मुझे गलत समझते होगे, लेकिन मुझे उस बच्ची के जाने का बहुत अफसोस हुआ था और मैंने अपनी बेटी का नाम आशिका रख दिया। आशुतोष ने एक नजर आशिका की तरफ देखा। आशिका ने अपनी आंखों में ब्राउन लेंसेज लगा रखे थे। उसकी यूनिक आंखों का कलर उसे सबसे अलग बनाता था। आज अगर आशिका ने लेंसेज नहीं पहने होते तो शायद आशुतोष उसे एक पल में पहचान लेते। आशुतोष ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा, तुमसे जुड़ी हर चीज घटिया और गंदी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपने गंदे खून को देने की। उनकी बातें सुनकर आशिका हैरान रह गई थी। वो तो उस इंसान को जानती तक नहीं थी, फिर भी न जाने क्यों वो उसे गंदा कह रहे थे। वहीं तृप्ति की नजरें नीची हो गई थी। आशुतोष ने वार्निंग फिंगर दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम यहां किस मकसद से आई हो, लेकिन यही कहूंगी कि गलती से भी हमारे सामने मत आना। जाने से पहले आशुतोष ने एक नजर आशिका की तरफ देखा। उनकी निगाहों में बेइंतहा नफरत थी जो आशिका को अंदर तक चुभ रही थी। आशुतोष वहां से चले गए थे। उनके जाते ही तृप्ति गुस्से में आशिका की तरफ पलटी और उसका मुंह दबाते हुए बोली, मैंने तुझे सीधे सीधे समझाया था कि तुझे मिस्टर स्काई से शादी करनी है, फिर तू हमें धोखा देकर भाग कैसे सकती है। आशिका की नजरें नीची हो गई थी। तृप्ति ने उसका मुंह पकड़कर ऊपर किया और कहा, अब तुम मेरी आंखों के सामने से कहीं नहीं जाओगी, बस बहुत तमाशा हो गया। मिस्टर स्काई के बेटे की शादी है, उसके बाद तुम सीधा उनके पास जाओगी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपने पहले पति से तलाक लिया है या नहीं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं, आशिका ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें जन्म दिया है और इतने साल पाल पोसकर बड़ा किया है, मेरा हक बनता है तुम्हारे ऊपर। देखा उस आदमी को, वो तुम्हें किस तरह की निगाहों से देख रहा था। मैंने तुम्हें उन निगाहों और लोगों की नफरत से बचाया है। आशिका हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इतने पैसे चुकाना हमारे बस की बात नहीं है। देख आराम से समझा रही हूँ, प्लीज अपनी माँ को इस मुसीबत से निकाल ले, तृप्ति ने इस बार इमोशनल दाव खेलते हुए कहा। अगर आशिका उसकी सच्चाई नहीं जानती होती तो अब तक उसकी बातों में आ चुकी होती। वो तृप्ति के इस दोहरे चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ थी। आपने मुझसे पूछकर लोन नहीं लिया था, आशिका ने सख्त आवाज में कहा।
अगर मुझे पहले पता होता कि तू ऐसी निकलेगी तो मैं कभी तुझे पैदा भी नहीं करती, तुझे पैदा होते ही मार देती। सही कहा था उस आदमी ने, तू गंदा खून है। तृप्ति हमेशा की तरह आशिका को भला बुरा सुनाए जा रही थी। आशिका के गुस्से में मुट्ठियां भिंज गई थीं और अब सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने तृप्ति को जोर से धक्का दिया जिससे उसका सिर कैफेटेरिया के टेबल से जा टकराया। मौका पाकर आशिका वहां से भाग गई। तृप्ति के सिर से खून बह रहा था। वो पीछे से चिल्लाकर बोली, अगर तू दूसरी दुनिया में भी चली जाएगी ना तब भी तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आशिका के कानों में तृप्ति की बातें पड़ रही थीं। उसे बस कुछ भी करके उससे दूर भागना था। आशिका भागते हुए अभिमान के कमरे में आ गई थी जहां पहले से ही काजल और निशा मौजूद थीं और साथ में आशुतोष भी। थोड़ी देर पहले ही आशुतोष ने आशिका को देखा था। उसे देखते ही उनकी गुस्से में मुट्ठियां भिंज गई थीं, लेकिन वो काजल के सामने ये नहीं बता सकते थे कि वो तृप्ति की बेटी है। वहीं काजल ने आशिका की तरफ घूर कर देखा। वो बोली, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मुझे मॉल में मिली थी, वो बदतमीज लड़की जो मेरी हेल्प करने के बजाय थैंक्स बोलने के बजाय उल्टा मुझे ही सुना रही थी। रहने दो काजल, तुम भी किसे सिखा रही हो, जो लोग गंदगी से जुड़े होते हैं वे घटिया ही होते हैं, आशुतोष ने आशिका की तरफ देखकर कहा। उसकी बातों में छुपे ताने को वो अच्छे से समझ सकती थी। आशिका के अचानक वहां आने पर माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। रचित ने सफाई देते हुए कहा, ये ऐश है, एक्चुअली ये हमारे यहाँ काम करती है, हॉस्पिटल आई हुई थी तो अभिमान से मिलने आ गई। काजल और आशुतोष भले ही आशिका को भला बुरा कह रहे हों, लेकिन निशा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसे आशिका के साथ अपनापन सा महसूस हो रहा था। सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। अभिमन्यु की नींद टूटी तो उठते ही उसने अपना मोबाइल चेक किया। उसके पास पृथ्वी का भेजा हुआ वीडियो आया हुआ था। अभिमन्यु जैसे जैसे उसे देख रहा था उसके चेहरे के भाव सर्द होते जा रहे थे। उसने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, प्रणाली कपूर तुम बीमार थी तो मैंने जाने दिया, ये सोचकर कि अब तुम अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती हो और इससे बड़ी सजा तुम्हारे लिए क्या हो सकती है, लेकिन तुम जैसे लोग किसी की दया के लायक ही नहीं होते हो। अभिमन्यु ने तुरंत पृथ्वी को कॉल किया और कहा, कहाँ हो तुम? नक्श राजवंश के पीछे वापस गोवा आ गया हूँ, वो इशिका मैम से मिलकर उनका ब्रेन वॉश करने के बारे में सोच रहा है, पृथ्वी ने जवाब दिया। अगर वो मिलना चाहता है तो उसे मिलने देते हैं, प्रणाली को तो अकेले नहीं छोड़ा तुमने, अभिमन्यु आगे बोला। हाँ मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, अब वो पूरी तरह हमारी निगरानी में है, लेकिन आपको नहीं लगता मिस्टर राजवंश का इस वक्त नक्श से मिलना सही नहीं रहेगा? हाँ जानता हूँ वो उनकी सच्चाई जान चुकी हैं, पर वो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट हैं, पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। उसकी परवाह तुम मत करो, इशिका की नींद से उठते ही मैं उसे वापस सिंघानिया मेंशन भेज दूंगा और साथ ही ये भी समझा दूंगा कि आगे क्या करना है,
बस तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ, अभिमन्यु रहस्यमय अंदाज में बोला और पृथ्वी को आगे का प्लान समझाने लगा। पृथ्वी ने उनकी बात पर हामी भरी। अभिमन्यु ने अब नक्श से पूरी तरह पीछा छुड़ाने का सोच लिया था। कुछ ही देर में इशिका भी उठ गई थी और अभिमन्यु ने उसे अपना पूरा प्लान बता दिया था। उसने इशिका को वापस सिंघानिया मेंशन भेज दिया ताकि नक्श को शक ना हो। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह 11 के करीब अभिमान को डिस्चार्ज मिल गया था। उसे रात को ही होश आ गया था। अभिमान के पास अभी भी आशिका, रचित और राघव ही रुके हुए थे। रात को जिस तरह से आशिका ने तृप्ति को घायल किया था, उसके बाद से ही वो उसे ढूंढ रही थी। आशिका अपनी सेफ्टी के चलते पूरी देर तक अभिमान के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी। डिस्चार्ज के बाद जब वे वापस निकल रहे थे तब अचानक तृप्ति उनके सामने आ गई। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा, तो आजकल इसे जाल में फंसाकर घूमा जा रहा है, तृप्ति ने आशिका को घूरते हुए कहा। उसके बाद उसने अभिमान की तरफ देखा और आगे बोली, तुम अभिमान राजवंश हो ना, तुम्हारी तो शादी होने वाली है और तुम यहाँ दूसरी लड़की के साथ हॉस्पिटल में हो। क्या तुम्हारी पत्नी जानती है इस बात को? और मैं आपको सफाई देना जरूरी नहीं समझता हूँ। हैं कौन आप जो अचानक आकर हमारा रास्ता काट रही हैं? अभिमान ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। जिस लड़की के साथ तुम खुलेआम घूम रहे हो वो मेरी ही बेटी है। अजीब बात है, इसकी भी शादी होने वाली है और तुम्हारी भी, और फिर भी दोनों बेशर्मों की तरह एक दूसरे के साथ हो, तृप्ति बोली। तृप्ति को देखते ही अभिमान समझ गया था कि वही थी जो आशिका को नक्श से शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। अभिमान ने तृप्ति को सर्द निगाहों से देखा। अच्छा, तो आप हैं वो जो अपनी बेटी की शादी उससे डबल उम्र से भी बड़े आदमी से करवाने को तैयार हो गई। दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की तरफ देखिए, क्या आपके अंदर जरा भी शर्म है जो पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया? साइड हटिए वरना अच्छा नहीं होगा, अभिमान ठंडे लहजे में बोला। लेकिन तृप्ति सुनने को तैयार नहीं थी, वो उन दोनों के आगे आकर खड़ी हो गई थी। अभिमान ने सिर हिलाया और अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया। उन्होंने तृप्ति को गन पॉइंट पर ले लिया था। मजबूरन तृप्ति को साइड हटना पड़ा। मेरे होते हुए आपके बुरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, अभिमान ने उन्हें चैलेंज करते हुए कहा और आशिका को वहां से ले जाने लगा। उन्होंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि पीछे से तृप्ति बोली, लगता है इस लड़की ने तुम्हें अपनी सच्चाई बताई नहीं है। आधी अधूरी बातें जानकर फैसला नहीं करना चाहिए। मैं इसकी शादी करवा रही हूँ एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ, लेकिन क्या इसने तुम्हें बताया कि ये पहले से शादीशुदा है? कहीं तुम्हें ये उम्मीद तो नहीं कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर इससे शादी कर लोगे? तृप्ति की बात सुनकर अभिमान को झटका सा लगा। वहीं आशिका की नजरें नीची हो गई थीं। आशिका ने उसे कभी इस बारे में नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है।